नमस्कार, स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं जनसत्ता पॉडकास्ट। आज कद्दावर नेता नारायण दत्त तिवारी की कहानी सुनिए। सत्ता के लिए नतमस्तक होने का आरोप भी बहुत लगता है एनडी तिवारी पर। उन पर आपातकाल के समय झुकने का भी आरोप लगता है। वो उन नेताओं में शामिल थे जो सही गलत पर स्टैंड लेने की जगह आलाकमान के आदेश का अनुपालन करना बेहतर समझते थे। एक मिसाल है अयोध्या का राम मंदिर का मामला। 1989 में जब तिवारी यूपी के मुख्यमंत्री थे, अयोध्या में राम मंदिर का शिला पूजन हुआ। नारायण दत्त तिवारी ने खुद इसके खिलाफ होते हुए राजीव गांधी के दबाव में शिला पूजन होने दिया। इस दबाव को बाद में उन्होंने स्वीकार भी किया था। अरुण त्रिपाठी कहते हैं, आपातकाल के समय दंडवत हो जाने की उनकी कमजोरी भी सामने आई। अपनी सत्ता के लिए बार बार नतमस्तक हुए, लेकिन हो सकता है कि उन्होंने अपनी राजनीति को सुरक्षित रखने के लिए तमाम तरह के समझौते किए हों। तिवारी पहाड़ से आने वाले बड़े नेताओं में थे, जहां उनकी खासी लोकप्रियता थी। तिवारी अपने दौर के बड़े नेताओं में थे। वो राजीव गांधी के समय वीपी सिंह, नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस और लालकृष्ण आडवाणी के कद के नेता माने जाते थे। नोएडा की स्थापना का श्रेय भी एनडी को ही जाता है। वरिष्ठ पत्रकार अजय सिंह लिखते हैं, आज चंद्रबाबू नायडू, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार खुद को विकासवादी नेता के तौर पर पेश कर रहे हैं, मगर वर्षों पहले नारायण दत्त तिवारी ने विकास पुरुष के तौर पर अपनी छवि बनाई थी और शोहरत हासिल की थी। यानी वो वास्तविक विकासवादी नेता हैं, जिन्होंने यूपी के विकास को नई दशा और दिशा दी। अरुण त्रिपाठी ने बताया, तिवारी काफी प्रभावशाली और विजन रखने वाले नेता थे। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी नोएडा का गठन भी उन्होंने ही किया था। संजय गांधी के कहने पर उन्होंने दिल्ली से सटे इलाकों में जमीन एकत्र की और एक औद्योगिक नगर बसाया। ये उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला और सबसे औद्योगिक इलाका है। जब नोएडा के गठन के 25 साल हुए तो हमने उनका इंटरव्यू किया था। वो काफी दुखी थे कि हमने नोएडा का गठन किया था। आज वहां हमारे ही बनाए लोग हैं, लेकिन हमें पूछ भी नहीं रहे हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि वो सबसे अच्छे रिश्ते रखते थे। नेता के रूप में वो बहुत प्रतिभा संपन्न और तेज आदमी थे। इस बात को तमाम नेता, अधिकारी और पत्रकार सब मानते हैं। वो मृदुभाषी और सरल थे। उनकी ये कार्यशैली और स्वभाव हर किसी को पसंद आता था। अरुण त्रिपाठी ने बताया, मनमोहन सिंह उनकी बहुत इज्जत करते थे। प्रधानमंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह उनको सर कहते थे। हालांकि नारायण दत्त तिवारी ने उनको मना किया कि आप प्रधानमंत्री हैं, हमें सर ना कहें, और मनमोहन ने इस मजबूरी को समझा भी। चरित्र पर लांछन एनडी के साथ साथ चलता रहा। इसके बहुत किस्से इतिहास में बताए जाते हैं। तिवारी की उम्र के आखिरी पड़ाव में उन्हें चारित्रिक लांछन का सामना करना पड़ा। तमाम महिलाओं के साथ उनके संबंध को लेकर उनकी बहुत बदनामी हुई। जब वो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे, उस दौरान एक चैनल का एक वीडियो प्रसारित किया गया जिसमें तिवारी तीन महिलाओं के साथ थे। इस स्कैंडल के सामने आने के बाद उनको पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद 2008 में रोहित शेखर ने मुकदमा दायर किया कि वो नारायण दत्त तिवारी के बेटे हैं। तिवारी इस बात को खारिज करते रहे, लेकिन बाद में डीएनए जांच में ये बात सही पाई गई। 2014 में तिवारी ने 89 वर्ष की आयु में रोहित शेखर की मां उज्ज्वला से शादी कर ली। बेटे के रूप में रोहित शेखर को स्वीकार करने के बाद उनके साथ नारायण दत्त तिवारी की फाइल फोटो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अरुण कुमार त्रिपाठी कहते हैं कि आखिरी दिनों में उनकी योग्यता को कुछ तो उनके चरित्र ने भी हानि पहुंचाई और देश की राजनीति भी बदल गई। वो धीरे धीरे हाशिए पर चले गए। उनकी कमजोरियों की वजह से उन्होंने अपनी राजनीतिक सत्ता भी खोई, कलंक भी लगा। लेकिन कांग्रेस में सोशलिस्ट नीतियों के निर्माण में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। उन्हें उनके अच्छे राजनीतिक जीवन, समाजवादी नीतियों, सरल और मृदुभाषी स्वभाव के लिए उन्हें याद किया जाना चाहिए।